के टीम अपने नित्य लीला में प्रवेश कर गए, इसलिए सभी लोग मुंडन करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और वे चपलेश्वर के प्रधान मित्र थे, वहीं पर रहते थे कुछ दिन गोवर्धन में। इसलिए उनके संप्रदाय के जितने वैष्णव लोग हैं उस दिन मुंडन करते हैं, पूर्णिमा को बहुत कार्य करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, मानसी गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए उस पूर्णिमा का नाम ही हो गया मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया ये लौकिक ब्रज भाषा है, मुड़िया मुंडन से मुड़िया होगा। उस दिन सभी लोग मुंडन कराते हैं और पूजा करते हैं गुरु जी की। भक्ति राज्य में, धर्म राज्य में गुरु मेरुदंड के समान है। जैसे शरीर में मेरुदंड न रहे यहाँ से यहाँ की हड्डी, तो आदमी चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, शरीर लुंज भुंज हो जाएगा। उसी तरह से धर्म राज्य में, भक्ति के राज्य में, तत्व ज्ञान के राज्य में गुरु मेरुदंड है। जिसको गुरु नहीं है वो चाहे लाख प्रकार से भजन करे, भजन नहीं हो। श्रुति स्मृति पंचरात्र आदि विधि बिना ऐकांतिकी हरि भक्ति उत्पादय एव केवल। एकांतिक भक्ति भी हो, कृष्ण की भक्ति हो, जब कुछ नहीं चाहते हैं ऐसा भी हो। श्रुति स्मृति, श्रुति मैंने वेद और उपनिषद, ये स्मृति सुनने से ये सब होता है, और स्मृति जागरण मनुष्य में मन हरि यज्ञवल्क और बहुत बहुत से शंख लिखि, ये सब बड़े बड़े हमारे ऋषि हुए हैं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता। इन लोगों ने सत्य की उपलब्धि कर बाहरी समाज को इस प्रकार से संचालित किया जाए कि वे लोग कमतर संसार में कार्य करते हुए भी भक्ति की तरफ में बढ़े, आत्मा की अनुभूति कर। इसलिए उन लोगों ने धर्मशास्त्र बनाए जिसके अनुसार में अभी हमारी समस्त राष्ट्रों की कानून न्याय विभाग दाय विभाग सब उसके द्वारा कंट्रोल होता है, किंतु उसका भी मूल उद्देश्य है भगवान के चरणों में क्रमशः भक्ति और श्रद्धा। तो ये स्मृतियाँ जिसमें बच्चे का जन्म से लेकर, जन्म के पहले गर्भ संस्कार से लेकर, जात संस्कार से लेकर जनेऊ और जितने प्रकार की है, 10 प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं, उस 10 प्रकार के संस्कार वो सब इनके द्वारा होता है। तो ये स्मृति और पंचरात्र, पंचरात्र होता है जिसके अनुसार में मंदिर का निर्माण होता है, हमारी शिक्षा का व्यवस्था होती है, गुरुकरण होता है, कैसे शिष्य बने, शिष्य का क्या लक्षण है, गुरु का क्या लक्षण है, उसके बाद में उनका परस्पर संबंध कैसे रहेगा और सज्जन राज्य में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक रही। तो ये हुआ पंचरात्र। और गीता भागवत महाभारत, महाभारत और रामायण ये इतिहास, ये पंचम वेद है। और श्रीमद् भागवत सबका श्रीमौ, इसमें पंचरात्र विधि भागवत, उसमें और जितनी विधियां हैं सब इसी के अंतर्गत। इनके अनुसार में कोई यदि भजन नहीं करता, एकांतिक भगवान का भजन भी करता है, किंतु इन पांचों के जो नियम हैं, जो हमारे आचार्यों ने इसके अनुसार में नियम जो बनाए हैं, इनका जो आदेश है उसको पालन करके भजन नहीं करते, भजन राज्य में अग्रसर नहीं होते हैं, तत्व ज्ञान नहीं लाभ करते, तो वो लाख के साथ सर पटक करके मर जाएंगे भक्ति राज्य में। तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी श्रद्धा होगी और श्रद्धा होने के साथ साथ में उनका अपराध भी कुछ होगा। इन विधियों के नहीं मानने से अपराध होता है, वो जरूर अपराध करने के लिए बाध्य है। जैसे एक अलभ्यती एकांतिक गुरु भक्ति, एकलव्य की गुरु भक्ति कैसी है, एकांतिक है। द्रोणाचार्य के अतिरिक्त हम किसी से गुरु नहीं बनाएंगे, अपने से हम उनका उनसे शिक्षा लें। और किया भी ऐसे ही, द्रोणाचार्य ने उसको अस्वीकार कर दिया, नहीं शिष्य करेंगे, तुम्हारी प्रवृत्ति बड़ी दीन नीच है, तुम्हारे अंदर में द्वेष है, द्वेष के लिए हमसे बाण विद्या करके भगवान और भक्तों का विरुद्ध आचरण करना चाहता है। वो जान गए कि बतलाए नहीं, नहीं दी जाए, उसने उनकी मूर्ति स्थापन करके जबरदस्ती एकांतिक भक्ति, उनकी पूजा के बिना कुछ ग्रहण नहीं करता था, उनकी पूजा के बिना कुछ काम नहीं करता था, उनका नाम लेकर के मूर्ति सामने सब समय बाण अभ्यास करता था। परिपक्व ऐसा हो गया, ये उनके गुरु जंगल में जा रहे थे परीक्षा के लिए, इनकी परीक्षा लेंगे अपने 105 शिष्यों की, दुर्योधन 100 भाई और 5 पांडव, और साथ साथ में एकलव्य को भी देखेंगे, किंतु वो छिपा हुआ, किंतु जानते थे द्रोणाचार्य साधारण आदमी नहीं थे, लौकिक अतिरिक्त पारमार्थिक भी थे। इसलिए एक कुत्ता जा रहा था इनके साथ में और भौंकने लगा आवाज पाकर, उसने ऐसे बाण संधान किए कि उसका मुख भर गया, बाणों से भर गया, किंतु हाँ भाव नहीं कर सका, उसको खरोंच तक कहीं नहीं आई। उस समय में द्रोणाचार्य ने कहा कि कौन किया है, जिधर से बाण आ रहे थे उधर गए, देखा जैसे एक काला दुष्टन निषाद जाति का, तुम कौन है, मेरा नाम है, क्या कर रहे हो, मैं गुरु जी से अस्त्र पाया, तो अत्यंत प्रवीण हो गए, तो तुम्हारे गुरु कौन है, द्रोणाचार्य, अच्छा तो अब तक तुम पास हो गया इस काम में, उत्तीर्ण हो गया, अब गुरु दक्षिणा दे दो, आप जो कुछ कहे, आप ही द्रोणाचार्य मैं जानता हूँ, आप कुछ मांग लीजिए, दाहिना अंगूठा भी काट करके हमको दे दो, बस तलवार उठाइए काट करके। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, उनको कोई दीनता चिंता नहीं आई, जानबूझ करके किया। संसार वाले कहते हैं कि एकांतिक गुरु भक्ति यह है, ऊपर पैसा ही दिखता है मूर्खों को, तत्व ज्ञानहीन है उनको भी ऐसा दिखता है। बड़े बड़े मैंने देखा हूँ स्कूल वाले भी अपने शिष्य का नाम एकलव्य रखते हैं। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एकलव्य सेना एक बनी हुई है, एकलव्य सेना न क्या गवर्नमेंट की तरफ लोगों की तरफ से, और उसकी हेड है कौन, वो जो फुलन दस्यु थी वो उसकी, हाँ वो उसका कमान उसके हाथ में, तो बतलाओ वो कैसी है एकलव्य सेना। तो ऐसे ही क्यों लिया उनका हाथ अंगूठा, किस लिए बाण तो चलाएगा ऐसे, अब पहले चलाता था ऐसे, अब कैसे चलाएगा, अब वो ऐसे चलाएगा या इनसे धरे पकड़ेगा, किंतु उसमें वो निशाना नहीं रहेगा, उसमें वो जोर नहीं रहेगा, इसलिए उसको भी उसके शक्ति को छीन करके करने की सीमा। और एकलव्य की परिणति क्या हुई, उसमें भी बड़ा वीर रहा, इससे भी हो सकता है कि वो बाएं हाथ से चला रहा हो, इसमें भी एक्सपर्ट हो गया। कृष्ण को अर्जुन को मारना चाहा, घोर लड़ाई में कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर उगा दिया, तो बतलाओ उसकी परिणति क्या है। इसलिए एकांतिक भक्ति कर रहा है, किंतु वेद शास्त्र पुराण स्मृति के अनुसार में नहीं होने से एकांतिक भक्ति भी क्या होगा, उत्पात आए बोलते हैं, केवल उत्पात, उत्पात मैंने क्या, उत्पात जानते हैं, उत्पात ही जो उसकी स्थिति नहीं होगी, इसलिए गुरु करने से अवश्य भाग। किंतु गुरु कैसा होना चाहिए इस पर विचार करना है, गुरु कैसा होना, शिष्य कैसा होना चाहिए, यह सब की गुरु का लक्षण क्या है, गुरु तत्व है क्या, इसके संबंध में हम लोग आज कल परसों विचार करें। इसी बीच में व्यास देव जी क्या तत्व हैं, वो कैसे गुरु हुए जगत के, इस पर भी विचार करें। उनका महत्व क्या है, उसे हम क्या सीख सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करें। कलाचंद ब्रह्मचारी जी पहले उठ करके दो चार शब्द बतलाएं, इसके बाद में दूसरे को जो जानते हैं वही बताएं। यहाँ पर विद्वान वेद वेदांत उपनिषद पुराण इत्यादि के विशेष करके विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके शिक्षक चतुर्वेदी जी और उनकी उपाधियां बहुत है। थोड़े से गुरु तत्व के संबंध में और व्यास जी के संबंध में ये बोलेंगे आप।
मदुत्तरमुत्तरीशो नान्यप्लवू भगवता पुरुषोत्तमस्य लीला तथा रत्नदेवामन्तरिणा कुन्तो भवेत् विवेद दुख दवान तस्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानां धत्तलोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज की पुण्य जयंती के अवसर के पूर्व समय में मैं तो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया था। प्रातः ब्रह्मचारी जी से भेंट हुई, पधारे हुए हैं, मैं बाहर ही रहा, आज्ञा हुई। अधिकार है या नहीं, पर बड़ों की आज्ञा का पालन तो करना ही है। वेद व्यास जी महाराज की एक तिथि को हमने गुरु पूर्णिमा के नाम से व्यवहार कर दिया। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि भारत की यही है कि वे वेद व्यास जी महाराज की पुण्यतिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और अपने अपने गुरु, अपने अपने परमेश्वरी गुरु, परात्पर गुरु सबका स्मरण करते हैं। भारतवासियों की कृतज्ञता के रूप में हम इसे गुरु पूर्णिमा को मान सकते हैं। एक वेद व्यास जी के जन्म दिवस को सारा भारत गुरु पूर्णिमा के नाम से व्यवहार लेता है, ये हमारी वेद व्यास जी के लिए हमारी आपकी सबकी श्रद्धांजलि। जहां तक वेद व्यास जी के संबंध की महत्ता की बात है, उनको वर्णन करना, उनके संबंध में कुछ कहना, ये तो इन छोटे शब्दों से हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति से वर्णन करना कठिन है, ये सत्य बात। विदेश में एक बार ये हुआ कि सबसे अच्छा मस्तिष्क किसका है, ऐसे लोगों को ढूंढो जिनका दिमाग सबसे अच्छा हो और जिनकी रचना सबसे अच्छी हो। मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग में विराजमान थे, महात्मा गांधी बैठे हुए थे। दो प्रश्न थे उनके, एक तो हम काल गणना करना चाहती, मालवी जी ने दुआने का उस समय पंचांग लाया करता था, बोले ये ही काल करना, और हमारी माता बहनों से पूछ लो बता देंगे सृष्टि कितने वर्ष की है। माता बहनों से पूछ लो, आप प्रोजेक्ट लेके आए करोड़ रुपया खर्च करेंगे कि हम ये चाहते हैं सृष्टि कब से बनी और अब कितने वर्ष की हो गई। अब वो विदेशी जो इटली वासी थे वो चौंक गए, बोले माता बहनों से, बोले हाँ भारत की माता बहनों से पूछ लो, ये काम तो वही कर देंगी आपका। क्यों? वे प्रातः काल बोलती हैं वाणी से संकल्प, और ये जो हमारा संकल्प होता है श्री विष्णु श्री विष्णु महापुरुष श्री विष्णु राज्य प्रवर्तमान से अद्य ब्रह्मयोगी द्वितीय परार्थे, बस यहां से काल करना हमारी प्रारंभ हो जाती है। कौन सा कल्प है, कौन सा मन्वंतर है, और कौन सी चौकड़ी का युग है, और चौकड़ी के युग में कौन सा वर्ष है, कौन सा नक्षत्र है। सृष्टि जिस दिन से हुई 1,90,00,000 वर्ष से लेकर आज तक की सृष्टि का दिन हमारी माता बहन रोज सुबह संकल्प में बोलती है, इसके लिए प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है, एकदम चुप हो गई। दूसरा उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा मस्तिष्क है जैसे हम विश्व के सामने रख सकें और जिसकी कोई टक्कर का दूसरा माइंड न हो। उस समय में एक विचार गोष्ठी हुई और उस विचार गोष्ठी में भारत से नाम दिया गया वेद व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज का नाम दिया गया कि विश्व में इनकी टक्कर का कोई मस्तिष्क सामने आवे। भगवत गीता जैसे ग्रंथ के रचयिता, महाभारत जैसे ग्रंथ के रचयिता, 18 पुराण बनाने वाले, एक वेद के 4 वेद बनाने वाले, एक वेद की प्रक्रिया को 8 तरीके से पढ़ाने वाले, जैसे हम और आप पढ़ते हैं मदन मोहन, और ये धन पाठ चलेगा तो मादा 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 मा मा दाना 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 मो दाना मो ना मो नमो मा दाना मो मोहाना मोहाहा नाना मा दाना मोहाना। आठ तरीके से व्यास जी ने पढ़ा दिया, लो पढ़ो, यानी एक नाम और 8 तरीके से पढ़ते हो मदन मोहन, मामा 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 मा दादा 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 नाना नाना मामा मामा दाना मो 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 मादाना मो नाना 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 मादाना मो हाना। लोग पर भाई बोले क्या है, बोले ये पढ़ाई हमारे यहां की, बोले हमसे नहीं होगी। एक वेद के 4 वेद और उसमें भी साम वेद जैसे वेदों के स्वरों का अंकन करना। ये जो संगीत है ये सामवेद से निकला, पर बाहर वेद व्यास जी वहां रकार लगाया जाता है, रकार लगाया जाता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वर लगाई जाती है, दोनों हाथ चलते रहते हैं, ये मालूम पड़ता है कोई चीज बुनी जा रही हो, शब्दों को बुनना होता है, और विचित्र तरीके से उसका गान होता था। तो वेद व्यास जी ने उस साम वेद के उन गायन पद्धतियों को अलग निकाला। हाउ हाउ हाउ, आपको भी याद हो जाएगा आज ये मंत्र, हाउ हाउ हाउ, माने मैं बुलाता हूं, आह्वान करता हूं, किस लिए, यसो हाउ यसो हाउ वरतो हाउ वरतो हाउ वरतो हाउ आसन हाई आसन यश के लिए बुलाता हूं, वर्षो अपने मेधा के लिए तुम्हें बुलाता हूं, हाउ माने इनवाइट यू, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, आप आवे और हमें यश दे दें, हमें कीर्ति दे दें। जिस वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए, जिन वेद व्यास जी ने स्वरों की रक्षा की, जिन वेद व्यास जी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के लिए स्मृति का निरूपण किया, वे वेद व्यास, उनका का मस्तिष्क विश्व में किसी का नहीं। ऐसे वेद व्यास जी को जिनके टक्कर का आज तक कोई मस्तिष्क हुआ ही नहीं, इसलिए ये ज्ञान शक्ति के अवतार रूप में आचार वल्लभ्य मान, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, उनमें से ज्ञान शक्ति के जो अंश स्वरूप वेद व्यास जी महाराज, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जहां तक वेद व्यास जी की बात है, ये कहीं भी हों सत्य हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कब बन जाए सहज संभाव्य है। वेद व्यास जी को एक क्षेत्र में तो नहीं बांधा जा सकता, परंतु गोपियां कहती थी हम उन्हीं की, उन्हीं की, उन्हीं की हैं, ये हमरे ही, हमरे ही, हमरे ही है। तो इन शब्दों के साथ यदि हम कहें व्यास जी हमारे थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। ये सबके से ये अलग बात है, वेद व्यास जी ब्रज के थे, वेद व्यास जी माठ गांव के थे, वेद व्यास जी सारी गांव के थे। वेद व्यास जी ने कृष्ण गंगा पर तप किया, वेद व्यास जी को यही मथुरा से, इस जनपद से प्रभु के दर्शन का साक्षात्कार मिला। ये जो वेद व्यास चबूतरा है कृष्ण गंगा पर, आज से बहुत वर्ष पहले जगन प्रसाद रावत मिनिस्टर आए थे, हम लोगों ने यहां के साहित्यकारों ने गोष्ठी की थी वेद व्यास चबूतरा पर। उस समय में निबंध खोजे गए, लिखे गए, और जगत गुरु शंकराचार्य तथा माधवाचार्य श्री कर्पात्री जी महाराज, इन्होंने स्वीकार किया कि हां वेद व्यास का संबंध भाई छहरी गांव से तो है। ये जो कृष्ण बोधाश्रम महाराज जी थे, ये छहरी गांव के, इन्होंने ये रहस्य उद्घाटित किया। ये रहस्य बतलाया इन्होंने, ये छहरी शब्द क्या है, बोले छहरी का अर्थ है मच्छोदरी, और मच्छोदरी से बना छोदरी, छादरी, छाहरी बन गया, और संस्कृत का नाम है मत्स्योदरी, मछली में से, मछली के उदर में से जो उत्पन्न हुआ वो मत्स्योदरी गांव बना, और मत्स्योदरी से मच्छोदरी, मच्छोदरी से छादरी, छाहरी गांव हुआ। कृष्ण बोधाश्रम महाराज वही के थे। प्रश्न ये है, इनका नाम है द्वैपायन, तो द्वैपायन का अर्थ क्या है, द्वीप, द्वीप शब्द का अर्थ है हाथी, द्विपा, हाथी का नाम है द्विपा, वो दो तरह से पानी पीता है, एक वो जो पाइप लगा रहता है दूर उससे उठाता है और फिर मुंह में घोर लगाता है, तो दो तरह से पानी पीने से हाथी का नाम क्या हुआ, द्विप। और जमुना के बीच में जो बालू निकलती है टापू जैसे बन जाता है, टापू की संस्कृत क्या है, द्वीप, टापू की संस्कृत है द्वीप। और हमारे व्यास जी का क्या नाम है, द्वैपायन, माने द्वीप है अयन जिसका बहुप्री समाज, तो वो हो जाएगा द्वैपायन, द्वीप एव अयनम यस्य तत् द्वैपायनम, द्वीप माने टापू, टापू पर पैदा हुए, वो टापू जमुना की दो धारा थी, जैसे जमुना जी की धारा कभी गिरिराज जी के समीप आती थी, जमुनावत गांव, कुंभंगा जी का गांव है जमुनावत, ये जमुनावत का गांव है, श्री जमुना जी की एक धारा उधर और एक धारा कृष्ण जन्म स्थान के पास से निकलती थी, यहां तो कोई चर्चा ही नहीं है प्राचीन, वहां से निकलती, जो जमुना जी के तट पर ही किले बनाए जाते थे, तो कंस का किला भी आजकल जो कृष्ण जन्म स्थान है वहां जमुना जी की एक धारा निकलती भगवान श्री कृष्ण के समय में, तो वहां से जैसे जमुना जी की दो धारा, ऐसे ही वेद व्यास जी का जहां प्रादुर्भाव हुआ, प्रागत्य हुआ, वहां भी दो जगह से पानी निकल रहा था, इसलिए उसका नाम हो गया द्वीप। और द्वीप में जन्म लेने के कारण इनका नाम हुआ द्वैपायन, काले थे इसलिए इनका नाम है कृष्ण, ये काले थे इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण, तो नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। और व्यास, व्यास पर उपाधि हो गई, हमने तो जिसको मंच पर भागवत जी के पास, पुराण के पास बैठा दिया, हमने उसी को व्यास मान लिया, हम व्यास जी को भूले नहीं, व्यास जी हमारे समीप में रहते हैं। हम जब भी पूजन मंडप में किसी विद्वान का करते हैं, उस विद्वान का नहीं करते, हम वेद व्यास जी के ज्ञान का करते हैं। हम वेद व्यास जी के उस मेधा का करते हैं जिन्होंने अपने प्रभाव से समग्र विश्व को आप्लावित कर दिया, उन वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। तो वेद व्यास जी कहीं के हों, वे हमारे वृत के हैं। उनका मन जैसा कृष्ण लीला में रमा, श्रीमद् भागवत जी में एक बार एक प्रश्न उठा कि ये दक्षिण की बनी हुई है, बनी हुई होगी क्योंकि उसमें बाघ के नाम, वृक्षों के नाम और वहां के नाम है। हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे महाराज जी देश को छोड़कर विदेश तक हो आए। अब यदि ये विदेश की चर्चा करें तो क्या ये कह दें महाराज जी विदेशी हैं? महाराज जी अगर हॉलैंड और वहां के देशों का आपने कविता में या रचना में वर्णन कर दें आंखों के हाल की तरह, तो क्या महाराज जी वहां के हो जाएंगे? इन ऋषियों का ज्ञान तो सार्वभौमिक होता है। यदि वेद व्यास जी ने दक्षिण यात्रा की, आश्चर्य की क्या बात है कि वहां का कोई प्रभाव आया हो। किंतु जो मन उनका श्रीमद् भागवत जी में एक शब्द अयम शब्द क्षमताय मद्र रविला हरदास वरिय अयम शब्द का प्रयोग करके सामने इससे तो सिद्ध होता है कि वे ब्रज की एक एक चीज से अवगत थे, एक एक स्थान से अवगत थे। क्यों न हो, वे ब्रज के ही थे और ब्रज में ही प्रगट हुए थे। अरे जब साक्षात अजन्मा कृष्ण आएंगे तो वेद व्यास ही पहले से क्यों ना आए उनका गुणगान करने के लिए। तो इसलिए मेरी दृष्टि में तो वेद व्यास जी चाहे वे कहीं के क्यों ना हो, हमारे थे, हमारे ब्रज के थे, छहरी गांव के थे और वेद व्यास जी कृष्ण गान करने के लिए भगवान से पहले ही आए। इन शब्दों के साथ जहां तक गुरु की महिमा है उसे वर्णन करना तो कठिन है। बुकारस चंद कारक त्याग रुकारस तक प्रकाशक, गु अक्षर का अर्थ है अज्ञान, गु शब्द का अर्थ है अज्ञान, रू रू का अर्थ है प्रकाशक। जो अज्ञान से प्रकाश की ओर लावे वही गुरु, जो हमारे अज्ञान को दूर करे, हमें ज्ञान का पंथ, ज्ञान का मार्ग, हमें ज्ञान से भर दे, हमें अलौकिक प्रकाश दे दे, उसी का नाम है गुरु। और उसी गुरु को हमने कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। यदि हमने गुरु प्रसन्न कर लिए तो रही क्या जाएगा। हमने यदि गुरु को सम्मान दे दिया, हमने यदि गुरु जी को मान लिया तो रह क्या गया। एक ब्रज के बहुत अच्छे मुसलमान भक्त हुए, उनका नाम था सनम साहब। राजस्थान के भक्तों में इनका नाम याकूब मोहम्मद था, याकूब मोहम्मद। कैसे कैसे कष्ट जीवन पाए, पर हे संतो, भारतेंद्र जी ने कहा था हिंदुओं के लिए भले ही किसी ने क्यों न कहा हो, इन मुसलमानों के लिए एक युग के निर्माता काशी के भारतेंद्र ने कहा इन मुसलमान हर जनन पे कोट इन हिंदू बारिये, इन मुसलमानों पे करोड़ों हिंदू निछावर करता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं, समय हो गया। याकूब मोहम्मद अलवर के थे। याकूब मोहम्मद की मां बोली मेरे प्यारे बेटे, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहती हूं, तू सुनाएगा मुझे। मुसलमान पठान की औरत और अपने लड़के से कहती है, रोज गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण का पाठ करती थी, गाना गाती थी बहुत अच्छी तरीके से, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब वो पूछते थे मौलवी लोग घर में आके, ये क्या गाती है, ये कैसा गाना गा रही थी, बोले ये कुरान की आयतों को कुछ अपने शब्दों में कहती, कुरान की आयतों को कुछ अपने शब्दों में बड़बड़ाती रहती है। तो चलेगी अब उसको तो रोज रामायण करे, और रोज रामायण करते करते जब उनका ध्यान गया कि रामायण का मूल वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में कैसे सुनूं, पंडित जी को बुला लूं। पर्दा नसीन थी, पर्दे से बाहर जा नहीं सकती थी, कुछ 100 वर्ष की घटनाएं। ये सुख संप्रदाय बिहारी जी के बराबर, उन्हीं के युगल के सोच दियो, सरसदेव जी महाराज के शिष्य। अब वो बाहर जा नहीं सके, बोले पंडित जी को यहां बुला ला। हम लोग पंडित लोग, अभी राम राम उस जमाने में और मियां के घर में, हाय हाय तोबा हो जाए, वहां सुनाने चले जाए तो हम लोग अधमरे हो जाए। ये तो इन लोगों ने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया, जो हिंदू मुसलमान सबको ले लिया, हम लोगों की तो खाट खड़ी हो जाती। पंडित जी जरा आप वाल्मीकि रामायण सुना दो। हाँ हाँ वाल्मीकि रामायण सुनाने को मैं ही रह गया पंडित। भाग यहां से, हमारी मम्मी जान सुनना चाहती है। तेरी मम्मी जान सुने या तेरा बप्पा जान सुन, या नहीं सुना या कोई वाल्मीकि बेटे? अरे तू ही सुना दे। मम्मी जान वो संस्कृत में है, तुम तो संस्कृत पढ़ ली। अच्छा संस्कृत पढ़ लेता। अलवर में गया, बोले गुरु जी जरा संस्कृत पढ़ा लो। बोले भाग यहां से, संस्कृत पढ़ेगा गाय का मांस खाने वाला। मिले भाग दिया बेचारा। दूसरी जगह गया गुरु जी संस्कृत पढ़ा लो। बोले तू पढ़ा का संस्कृत, मुसलमान की औलाद तेरी इतनी हिम्मत? अरे हमारी पाठशाला गड़बड़ हो जाएगी, बदल गए आप। इन संस्कृत पढ़ने वालों को मैं हमेशा श्रद्धांजलि देता हूं, न बड़े कठिन कार्य किए। जब सर विलियम जोन्स आए थे, महाराज जी तो बड़े आराम से वो आए बुलाए, तो बन महाराज जी गए थे तो उनका आचारा खींच लिया था बुलाया था। बूमैन बूमैन, बोले आई एम नॉट बूमैन, मैं बूमैन नहीं हूं। बोले नहीं बूमैन बूमैन, उन्होंने समझा जैसे चनिया पोल का पहने जाती है, तो महाराज जी ने कोई चनिया पहने आ गया तो बूमैन बूमैन करके बन महाराज का खींच लिया था कपड़ा। वो खुद सुनाते थे हमको, तो वुमेन वुमेन करके रास्ते में उनका कपड़ा खींच लेते थे। वो नहीं भी मैं वुमेन नहीं, आई मैन और नहीं वुमेन और नहीं बोल बोल आई मैन। वो बड़ी मुश्किल से बेचारे चीजें चलाते थे। अब तो बहुत अच्छी जगह हुआ है, सब लोग पहचान को भी गए, ये मर्द है जो औरत कौन होता है। इन सन्यासियों ने बड़े महाराज कष्ट हो गए, बहुत कष्ट हो गए। तो वहां उन्होंने कहा आप कौन है? बोले मैं सर विलियम जोन्स हूं। बोले क्यों आए हैं इधर? बोले काशी के पंडितों से संस्कृत पढ़े। बोले अच्छा थोड़ा सा इसको गोमूत्र गोबर ले आओ। बोले ये क्या? दुर्भाग्य। बोले यूरिन। बोले ये क्या? बोले लेटरी। बोले ये क्या करना पड़ेगा? बोले खाना पड़ेगा। उसने फिर तोड़ा और अपने वायसराय से कहा इन पंडितों के पास किसी भी विदेशी को मत भेजना, ये लेटरिन खाने को देती। वो गोबर होता है ना, अब हम लोगों का तो गोबर पंच का भी माना जाता है, और गोमूत्र गोबर लेती है भैया। तो वो गोमूत्र तो यूरिन, उसने दुभाषिया ने कहा कि यूर मैंने एनिमल का, यानी मनुष्य का भी यूरिन नहीं, जानवर का पेशाब। बोले हाँ हाय हाय, संस्कृत पढ़ने के लिए इसके ये भारत राज्य में कोई संस्कृत नहीं पढ़ना। ये पहले लैटिन खिलाती फिर गोमूत्र खिलाती है, फिर कहा जरा पंचामृत ले लो। बोले उसमें क्या है? ये क्या डाला आपने? शहद। उस शहद क्या है? बोले वोमिट। वो जो दुभाग्य था बोले वोमिट उल्टी। वो काहे की? बोले मक्खी की, मक्खी जब उल्टी करती है तो शहद बच जाता है। वो मक्खी के फूल के रस की उल्टी, तो वो क्या क्या समझ? उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा संस्कृत। जब मुश्किल से हमारे वायसराय ने कहा नहीं जाओ, दूसरा कोई जाओ पढ़ ले, तो दूसरा पढ़ ले आया। उन्होंने कहा सुबह आओ, वेद तो सुबह पढ़ाई जाती, वेद सुबह पढ़ाई है, मैं आ गया। कोई ये कपड़े से नहीं, गंगा में नहा के आओ, पंचमार गंगा में। दो दिन नहाया बीमार पड़ गया, बोले पंडित मार डालेंगे भारत के लिए, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे हमको। वही दशा इनकी हुई, पर केवल गंगा सहाय नाम के विद्वान निकले। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक काम करो, एक तो गाय का मांस खाओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोले मम्मी जान क्या किया जाए? बोले बेटे गाय का मांस नहीं, अगर मुझे रामायण सुननी है तो वो मांस क्या, हम कोई मांस नहीं खाएंगे। प्रतिज्ञा करते हैं आपके मांस बंद। फिर गए पंडित जी के पास, बोले हम मांस नहीं खाएंगे। बोले अंडा तो खाती हो यहां की, वो तो खाता है। बोले ना बस बस अंडा ही खाता है, हम नहीं पढ़ाएंगे। अंडा छोड़ा, प्याज छोड़ी, लहसुन छोड़ी और वाल्मीकि रामायण पढ़ी। उन्हीं का बनाया हुआ राधा सुधा निधि का अनुवाद हुआ और वल्लभाचार्य जी का मधुराक्षर अमेरिका से सर्वप्रथम इंग्लिश में निकला सनम साहब का, ऐसा विद्वान हुआ। वो व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, विद्यावादी जी के संबंध में वृंदावन में आए और काम क्या करते थे, कृष्ण भगवान का पंखा करते। विद्या अलग चीज है और विद्या से उनकी एक और चीज है, उनके शब्द आपके सामने आज रखता हूं। उन्होंने कहा कि मम्मी जान मुझे एक चाबी मिल गई, खजाने की चाबी मिल गई, एक ऐसा खजाना मिला जो कभी खर्च नहीं हो सकता। उस खजाने में कितने हीरे जवाहरात, उन्हें कोई न तो माई का लाल गिन सका और न गिन सकेगा, और वो चाबी है संस्कृत भाषा। ये शब्द थे उनके, चाबी है संस्कृत भाषा। इस संस्कृत भाषा से खुल गया खजाना, उस खजाने में अनंत चीजें पड़ी हुई हैं। मैं तुम्हें नित्य नई कथा सुनाऊंगा। सनम साहब की वो हालत हुई कि भगवान कैसी रक्षा करते हैं। अजमेर में पिताजी थे डॉक्टर, वहां कतल करने मुसलमान गए, अजमेर में मारने की चेष्टा की, भगवान बचा लेते हैं। ये मोहम्मदन का रूप बना के कहते हैं, अरे सनम साहब तो अभी जयपुर गए, ये मारने वाला नलो क्या है। घर पर मारने की हिम्मत की कि ये काफिर हो गया है, ये संस्कृत पढ़ता है। और वो कंठी पहनते थे, माला चंदन लगाते थे और पायजामा पहन मुसलमानी टोपी पहन के नाचा करते थे कृष्ण के वियोग में और कृष्ण के विरह में। राधा कृष्ण के ऐसे उपासक हुए कि वो उपासक सबसे कह के आया, आज शरद पूर्णिमा को वृंदावन सला जाए, सब भक्त आए। और पंखा करते करते इत्र की शीशी उनकी झोले में थी, चाहते थे जल्दी आऊं, देर हो गई तो सभा के बीच में नहीं जाना चाहिए, तो वे कोने में बैठ गए कि मैं आज राधा रानी को अतर लाया था, नहीं दे सका। स्वामी जी ने जाने कैसे पहचान लिया और वे बोल बातचीत करती हुई बोली, ललता अरे ये सखी आई है, अतर की सीधी झोला में छिपाए के धरिए मोगू दे नहीं। ललता धमक करके आई और बोली, चौरी सखी आज तेने राधा रानी को देगी, अतर की सीधी छिपाई है। सनम साहब की गर्दन झुक गई, हाथ झोले में गया, इत्र निकाला, स्वामिनी जी को सौंपा, स्वामिनी जी के इत्र लगा, कृष्ण भगवान के इत्र लगा, गोपियों के लगा, बचा हुआ देवे सखी। सनम साहब तो भाव में बह गए, आज राधा रानी ने मुझे सखी कह दिया, आज राधा रानी ने मुझे सखी वर्ग में ले लिया। बस उस समय मैं पद गाया था और ये बड़ा फेमस जो पद है कि जब प्राण तन से निकले, ये उन्हीं सनम साहब जिसकी आज कैसेटे बाजार में आप सुनते हैं कि मेरा तन से प्राण तब निकले जब आपकी आंखों में मेरी आंख मेरे नेत्र तुम्हारे चरणों में जिस समय लग रहे हो, हे राधा हे श्याम सुंदर, तब प्राण मेरे निकले। ये जो गाना है और श्याम के बहुत से गाने, उन्हें गाते गाते शरद पूर्णिमा को यहां लाए थे, वृंदावन में पंखा भगवान का रास लीला में करते थे। और जब उन्होंने सबको बुलाया था, आज बहुत बड़ा उत्सव होगा, उत्सव कैसा गाना गाया, गाने में ये गाया कि हे स्वामिनी जी आप मुझे अपनी शरण में ले लो। उन्होंने मत्था टेका महारास में और रास में माथा टेकते ही उनके भक्त प्राण निकल गए। वो सनम साहब जिनकी माज जिनके पद ये वृंदावन के सब राशधारी आज गाते हैं, पर वहां रे प्रभु कैसी कृपा कर दी कि जिसने हमारे इस रामायण और भागवत जी पढ़ने के लिए, वेद व्यास जी की वाणी पढ़ने के लिए उन्होंने संस्कृत बड़ी कठिनाई से पढ़ी, माता को पढ़ाई और उस वेद व्यास की ज्ञान राशि को उन्होंने मुसलमानों को प्रकट किया कि देखो इसमें बड़ी सुंदर वस्तु है, आओ संसार के धक्के खाकर आओ और राधा रानी श्री श्याम सुंदर की शरण रहो, राधा माधव की शरण रहो। ऐसे ज्ञान देने वाले संत और संतों के जो मूल निधि केंद्र वेद व्यास जी, जिनकी वाणी से ऐसे अनंत अनंत संत प्रभावित हुए, उन वेद व्यास जी के चरणों में कुछ जानता तो था नहीं, वाणी पवित्र करनी थी। इन शब्दों के साथ
गुरु पूर्णिमा गुरु तत्व और व्यास के संबंध में आज से हम आरंभ कर रहे थे और हमारे आदरणीय साक्षात में परम मित्र, बहुत दिनों के मित्र, हमारे गौड़ीय भागवत पत्रिका के संपादक मंडली के प्रधान आज यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर उपस्थित हो गए सौभाग्यवश। आप लोग ने इनकी वाणी को सुना, कितना गांधीर्य विद्वता, कितनी गांधीर्य विद्वता है। मैंने अभी हाल ही में दुर्वाचार्य ऋषि के ऊपर में उनके इतिहास के संबंध में, जन्म के संबंध में हमने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी। उसमें हमने छायरी गांव के संबंध में व्यास जी के जन्म के स्थान में दुर्वाचार्य जी के जन्म और उनकी तपस्या स्थली, उनकी क्रीड़ा भूमि, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के संबंध में और व्यास जी के पिता पराशर जी इत्यादि के संबंध में हमने कुछ लिखा। आज उसकी पुष्टि उनके बातों से सुनकर के हमको होकर के मुझे बहुत आनंद हुआ। छायरी के संबंध में साधारण रूप में हमने लिखा है, किंतु इन्होंने संस्कृत व्युत्पत्तिगत जो मच्छोदरी से आरंभ करके और उसका कैसे अपभ्रंश होता गया और धीरे 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 छायरी काम हुआ, संस्कृत मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं उसमें इस अंश को जोड़ दूंगा। व्यास जी के जन्म के संबंध में आप लोगों ने सुना, ये मथुरा के कृष्ण गंगा घाट जहाँ है, चक्रवर्ती पुष्प के पास में है, उसी जगह द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इन्होंने बतलाया। इनसे पहले इस विषय में हमारी पहले भी चर्चा हुई थी। व्यास जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था, तो इनके संबंध में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, फिर कल परसों हम लोग इस विषय में बोलेंगे। व्यास जी वास्तव में नारायण स्वयं, कोई ऐसा एक श्लोक भी है, व्यास नारायण है, शंकर शंकर रक्षा, इन दोनों में किसकी बात नहीं बात। शंकर जी तो साक्षात शंकर हैं और व्यास जी नारायण हैं। कलयुग ऐसा भयानक आएगा कि सब लोग भ्रम भ्रष्ट हो जाएंगे, वेद भी लुप्त हो जाएंगे, उपनिषद भी लुप्त धीरे धीरे हो जाएंगे, पुराण भी धीरे 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 लुप्त हो जाएंगे, स्मृतियां भी लुप्त हो जाएंगे, वेद के मंत्र इत्यादि किसी को याद ही नहीं रहेंगे, ब्रह्मचर्य सब समाप्त हो चुका होगा, इनकी परंपरा कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान ही अपने अंश के रूप में, व्यास के रूप में अवतरित हुए, अन्यथा दूसरों के लिए इनके वेदों के मंत्र दस्तारी थी कोई एक दो हो सकते हैं, किंतु उनको सारे को कंठस्थ रखना, उसकी विशद व्याख्या करना, विशेष करके उसी के आधार पर वेदांत सूत्र बनाना और उसमें सारे मतों का सामंजस्य कर देना, उसमें जहां पर विरुद्ध आसपास के वचन हैं, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का रूप है, इन सबको सामंजस्य कैसे किया। भगवान में विचित्र कुछ नहीं है, उनका रूप है अरूपवत एव प्रधानत्व ही प्रधानत्व क्या है। सरदार में वो जसोदा के पुत्र भी हैं। वेदों में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनमें कृष्ण का नाम है, नंद बाबा का नाम है, जसोदा मैया का नाम है, भूरी सिंह गाऊ का नाम है। मैं इन्हीं से आज कह रहा था शुभानंद जी को या इनको जो जा करके उनसे वेदों से ये लिखवा करके लाओ, जो कृष्ण का नाम वेदों में कहाँ कहाँ किस किस रूप में है। क्योंकि अभी मैं गया था हॉलैंड में, कुछ आर्य समाजी है वहां पर कुछ प्रचार करते हैं, तो उनका कोई उनकी एक बड़ी संस्था है, वह कुछ कृष्ण से घबराते हैं, कृष्ण को देव भयभूत बतलाने की चेष्टा करते हैं। कृष्ण के इस रासलीला को और इस गोपी और ब्रज प्रेम को अत्यंत तुच्छ स्त्री पुरुषों का प्रसंग मानते हैं, इसलिए वहां का एक दल हमारे पास में आया था रिपोर्टरों का, तो हमसे बहुत से प्रश्न किए। मैंने प्रश्नों का ऐसा समुचित उत्तर दिया कि वो लोग तो चुप रह गए। वेदों में से भी मैंने कुछ उत्तर दिए, ये कृष्ण का नाम कहाँ, श्यामा सबलम प्रपत्ते, श्यामा सबला प्रसलम प्रपत्ते, और भी कितने हमने बतलाए। तो मैं इसकी पुष्टि के लिए इनके पास में भेज रहा था, जिसे उनके पास में जाकर के वेदों में कहाँ पर किस रूप में उनके नाम आए हैं। एक बार इनके प्रसंग में चर्चा चल रही थी, ये कह रहे थे कि वेदों में बहुत जगह में इसका उल्लेख है, समस्त ब्रज लीला का वेदों में किसी न किसी रूप में उल्लेख है, तो उसी के लिए ये भेजा था। तो व्यास जी भगवान के अवतार हैं, इन्होंने भी बताया जी ज्ञान शक्ति के अवतार। हम लोग उनको सप्तावेश अवतार मानते हैं। सप्तावेश अवतार माने क्या, किसी योग्य जीव में, योग्यतम जीव में भगवान की कुछ ऐसी शक्ति का उसमें प्रवेश होता है तो उसे कहते हैं सप्तावेश। जैसे परशुराम जी में, परशुराम जी भगवान के सप्तावेश अवतार, साक्षात अवतार नहीं थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी को, नारद गोस्वामी को भक्ति का, पृथ्वी महाराज जी को, ऐसे ऐसे बहुत से सप्तावेश अवतार हैं। उसमें शिव जी को भी, हमारे व्यास जी को भी सप्तावेश अवतार माना गया। किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि इतने ग्रंथ